आचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी थी, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, और जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार यह ग्रंथ की रचना की थी। यह उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। अब यहाँ अपना प्रकरण 18 पृष्ठ पर आए, तीसरी पुस्तक चल रही है, 18वां पृष्ठ है। कल हमने पहले देखा था कि 11 प्रकार के अनंत है। उस 11 प्रकार के अनंतों में से इस प्रकृत में ने इस पुस्तक में यहाँ द्रव्य प्रमाणानुगम में कौन से अनंत की बात है, यानी जो मिथ्या दृष्टि अनंत है ऐसा सूत्र आया था। मिथ्या दृष्टि जीव कितने हैं? तो मिथ्या दृष्टि जीव अनंत है। तो प्रश्न पूछा गया था कि ये अनंत कितने हैं और कितने प्रकार के होते हैं, तब उसके 11 प्रकार हमने देखे। अब उन 11 प्रकारों में से यहाँ कौन सा अनंत है, यह प्रश्न पूछने पर अब उसका उत्तर देते हैं। उसका उत्तर तो यह आया था गणना अनंत है, परंतु गणना अनंत के भी भेद है। अनंत भी अनेक प्रकार के, अनंत प्रकार के हैं, तो उसमें भी तीन मुख्य भेद कहेंगे, फिर उसके और भेदा भेद के भेद कहेंगे, फिर उसमें से कौन सा अनंत मिथ्या दृष्टि में पाया जाता है उसकी बात करेंगे। तो हम 18 पृष्ठ पर आए हैं, वहां लिखते हैं गणनानंत तीन प्रकार का है। कल हमने इस वाक्य को पढ़ा था, एक तो है परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत। सबसे छोटे में छोटा जो अनंत है वो परितानंत है, उसमें भी जगन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद हो गए। युक्तानंत में भी जगन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद हो गए और अनंतानंत में भी जगन्य मध्यम और उत्कृष्ट भेद होंगे। तो यहाँ ये तीन प्रकार बताए हैं। तब शंकाकार पूछता है, सूत्र में अनंता इस प्रकार मिथ्या दृष्टियों का परिमाण सामान्य रूप से कहा गया है, उसका प्रमाण यानी उनकी संख्या तो सामान्य अनंत ही इतना ही कहा है, पर इतने कथन करने मात्र से अनंत के तीन भेदों में से इसी अनंत संख्या वाले मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि जीव है, अर्थात मिथ्या दृष्टि जीवों का जितना प्रमाण है इतना दूसरे अनंतों में नहीं है, यह बात नहीं जानी जाती। क्या कहते हैं? गणनानंत तीन प्रकार का है, अभी अभी हमने देखा था ना, कौन कौन सा? परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत। तो मिथ्या दृष्टि जीव अनंत है ऐसा सूत्र में आया है, तो वो सूत्र पढ़कर या सुनकर ऐसा नहीं बोध होता कि इन तीनों में से कौन सा अनंत है। अनंत है इतना सुनने मात्र से वो परितानंत है, युक्तानंत है या अनंतानंत है, इसका बोध नहीं होता है, क्योंकि ये शंकाकार की शंका ही चल रही है अभी, क्योंकि सूत्र में अनंत के किसी भी भेद का उल्लेख न करके केवल उसका बहुवचन रूप से निर्देश किया है, यानी अनंत है ऐसे मिथ्यायुषि जी कितने, तो अनंत है इतना ही वहां निर्देश यानी कथन किया है। जहाँ पर तीनों अनंत पाए जाते हैं वहाँ उसी अनंत अनंत का ग्रहण होता है सो भी नहीं है, यानी विशिष्ट अनंत अनंत का ग्रहण होता है ये भी बात नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीवों के बहुत्व की अपेक्षा करके अनंत शब्द का बहुवचन प्रयोग बन सकता है, यानी अनंत है ऐसे बहुवचन का प्रयोग किया है, तो उसमें से कोई एक ही अनंत होगा ये भी बात नहीं बन सकती, ऐसा उनका कहना है। अथवा तीनों अनंत अपने अपने भेदों सहित अनंत विकल्प रूप है। इसका अर्थ क्या है? तीन प्रकार के अनंत हमने देखे थे, देखे अभी, परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत। उसके और भेद करेंगे तो जघन्य एक परितानंत लेते हैं, तो जघन्य में जघन्य परितानंत और सबसे उत्कृष्ट परितानंत, और इसके बीच में मध्यम के कितने भेद हो गए? अनंत। उसके बीच मध्यम वाले भेद अनंत हो गए। फिर जघन्य युक्तानंत से लेकर उत्कृष्ट युक्तानंत, उसमें भी बीच वाले भेद अनंत हो गए मध्यम के, और जघन्य अनंतानंत से उत्कृष्ट अनंतानंत, उसके बीच वाले भेद कितने हो गए? अनंतानंत हो गए। खाली अनंत भी नहीं, अनंतानंत अनंतानंत, हमने पहले देखी थी बात। तो क्या कहते, देखो कि उसके अपने भेदों सहित अनंत विकल्प रूप, विकल्प कहो या उसके भेद कहो, एक ही बात है, यानी अनंतों के भी अनंत भेद है। उनमें से इसी भेद की विवक्षा से बहुवचन दिया है, प्राप्त हुए भेद की अपेक्षा नहीं, यह नहीं जाना जाता है। यानी इतने सारे अनंतों के भेद है, उसमें जिस पर्टिकुलर अनंत है, यही विशिष्ट अनंत है, विवक्षित ही अनंत है, यह इस सूत्र के द्वारा नहीं जान सकते, ऐसी शंकाकार की शंका है। उसका समाधान आगे पूर्वोक्त शंका का परिहार करते हैं। कैसा करते हैं? आगे ने अभी वो तो आगे भी सूत्र आएगा। तो मिथ्या दृष्टि जीव काल की अपेक्षा, यानी मिथ्या दृष्टि जीवों की जो अनंत संख्या है, वो काल की अपेक्षा उसको कंपेयर करेंगे तो अनंतानंत अवसर्पिणियों और उत्सर्पिणियों द्वारा अपहृत नहीं होते हैं। इसका अर्थ हम देखते हैं। क्या कहा यहाँ? मिथ्या दृष्टि जीव जो है उनकी संख्या इतनी है, कितनी है? अनंतानंत उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी। एक उत्सर्पिणी में कितना काल है डॉक्टर? एक उत्सर्पिणी छह काल है, दस कोड़ाकोड़ी सागर, और अवसर्पिणी में दस कोड़ाकोड़ी सागर। एक उत्सर्पिणी और एक अवसर्पिणी का काल मिला के कितना है? बीस कोड़ाकोड़ी सागर, जिसको कहते हैं एक कल्प काल। उसमें समय कितने होंगे? आप कहेंगे क्या कहते हो, एक सेकंड के समय गिनने जाओ तो एक सेकंड में तो असंख्यात सैकड़ों तो आवली होती है, और एक एक आवली में असंख्यात समय होते हैं। कितने असंख्यात? तो एक आवली में जघन्य युक्ता संख्यात इतने समय होते हैं। तो एक सेकंड का ही हम यहाँ माप नहीं लगा सकते हैं। तो सेकंड की बात छोड़ो, मिनट की छोड़ो, वर्ष की छोड़ो, यहाँ तो सागरों की बात, और वो भी कितने? 20 कोड़ाकोड़ी सागर मिलकर एक कल्पकाल है। तो एक कल्पकाल में कितने समय हो गए? अब यहाँ कितने बात कर रहे? अनंतानंत कल्पकाल। ये हमने तीन प्रकार के आनंद देखे ना, परितानंद, जगह युक्तानंद और अनंतानंद। अनंतानंद वो बड़ा वाला अनंत। तो अनंतानंत कल्पकाल बीत जाए तो उसमें कितने समय बीत जाएंगे, उसके समय गिनो। तो वो तो उससे कितने अनंत गुणे हो गए? तो ये इतने अवसर्पिणी और उत्सर्पिणियों के द्वारा भी अपहृत नहीं होते, इसका अर्थ देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ 50 लोग बैठे मान लो, और हमने कोई विशिष्ट ये 100 मान लो ना, अभी 100 लोग बैठे हैं और हमें ये 100 संख्या बतानी है। तो 100 संख्या हमें बतानी है तो हम कहेंगे एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 होते हैं। हम कहेंगे ये जो 100 संख्या है, मनुष्यों की संख्या हमको यहाँ बतानी है, तो एक मिनट में जितने सेकंड होते हैं, उससे ये संख्या अपहृत नहीं होती है। यानी क्या? हम एक बाजू एक मिनट के समय सेकंड रखेंगे, 60 सेकंड है, और एक बाजू मनुष्यों की यहाँ की संख्या रखेंगे 100 है। अभी उसमें से एक एक सेकंड निकालो, यहाँ एक एक मनुष्य निकालो संख्या, वो उसको बात करो। ऐसे करते करते यहाँ से 60 हमने सेकंड निकाले और यहाँ से 60 जीवों को गणतरी की, उसकी गणना की, तो अभी और भी 40 बच गए वहाँ। तो हम क्या कहेंगे? तो एक मिनट के जितने सेकंड होते हैं उसके द्वारा ये 100 संख्या है वो अपहृत नहीं हुई। यानी दोनों के आपस में वो बाद नहीं हुए, हाँ, तुलना नहीं कहते उसको, उसमें से वो बाद नहीं हो सके। यानी यहाँ जीवों की संख्या ज्यादा है, एक मिनट में सेकंड है 60 और यहाँ हमने गणना की थी 100, तो ये 60 से 100 ये संख्या जो है वो अपरहत नहीं होती, उसमें से वो बाद नहीं होते, यानी उससे वो बहुत ज्यादा है। यानी मिथ्या दृष्टियों की संख्या कितनी है? अनंत है। कितनी अनंत है? तो अनंतानंत वाला जो मध्यम अनंतानंत कोई भेद है, उतने अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी बीत जावे तो उसमें कितने समय जाएंगे, उन समयों से भी ये मिथ्या दृष्टियों का जो अनंत वाली संख्या है वो बड़ी है, बड़ी है वो। यानी मिथ्या दृष्टियों वाला अनंत बड़ा है, तो ये अनंतानंत तो हम कल्पकाल लिए हैं, तो मिथ्या दृष्टियों की संख्या भी निश्चित ही ये अनंतानंत वाला अनंत होगा। एक सिर भी होगा तो ये मध्यम अनंतानंत में आएगा। अनंतानंत के भेद भी अनंतानंत है।
देखो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये जो अनंत हुंडावसर्पणी और अवसर्पणी काल के जितने अवसर्पणी और उत्सर्पणी के जितने काल है, मतलब समय है, उससे भी मिथ्या दृष्टि जीव अधिक है, ये बताना चाहते हैं। और उसको देखना हो,
देखो 28 पेज निकालना, नीचे से दूसरा पैराग्राफ है समाधान। हाँ, वही काल के, एक काल में नहीं। देखिए, जब हम द्रव्य की अपेक्षा कहते तो हम संख्या गिनते हैं कितने हैं, बराबर। काल की अपेक्षा हमको जीवों की ही संख्या गिननी है, तो माप हमारा काल का है। जैसे प्रदेशों के माप से क्षेत्र गिनते हैं ना, प्रदेशों के माप से कभी कभी संख्या भी गिनते हैं जीवों की। कैसे? जैसे हम कहेंगे इसमें कितने परमाणु हैं, अनंत परमाणु हैं, है ना, या असंख्यात प्रदेश है, ऐसा कहेंगे तो उतने जीवों की संख्या, ऐसे भी हम कहेंगे। कभी प्रदेश की अपेक्षा से भी उसको गिनेंगे, ख्याल है ना। तो यहाँ काल की अपेक्षा से हम गिन रहे, हमारा माप है काल का, यानी काल में लेना समय। जैसे हमने उदाहरण के तौर पर एक मिनट में सेकंड गिने थे, यहाँ तो एक मिनट में कितने समय हो गए उतने जीव कहेंगे हम। मिथ्या दृष्टि जीव हमेशा ही उतने अनंत होंगे, ऑल द टाइम।
देखो, आप मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या एक डजन कहेंगे, डजन के हिसाब से भी लगा सकते हैं, सैकड़ों में लगा सकते हैं, हजारों में लगा सकते हैं, इसी तरह।
हाँ, ये
काल, हाँ। काल कितना गया, तो काल की जो संख्या होगी, मतलब एक 100 समय गए, 1000 समय गए, ऐसे जितने समय है उससे भी अधिक है, ऐसा बताना चाहते हैं। यानी पहले माप किसका दिया? काल के समयों का।
अभी यहाँ हम 28 पेज पर जरा देखकर फिर अपना मूल पेज पर आते हैं। हाँ, आपका प्रश्न है जीव अनंत और पुद्गल अनंत अनंत देखते हैं, वो बहुत स्थूल कथन है, बहुत ही स्थूल कथन है, उसकी बात तो चलेगी अभी यहाँ। वो कौन सा वाला अनंत अनंत है, उसके आगे कितने बार उसको अनंत को अनंत से वर्ग करते जाओ तो फिर पुद्गल की संख्या आएगी, ये सब बातें यहाँ आने वाली है।
ये आपके सारे प्रश्नों का उत्तर अभी आपको 28 पेज पर मिलने वाला है, थोड़ा धैर्य रखिए तो सभी बातें क्लियर हो जाएगी और आपके जो मन में प्रश्न है वो भी सॉल्व होंगे। चलो,
28 पेज पर ऊपर से दूसरा शंका है, दूसरी शंका जो है वो जहाँ 18 लिखा है ना, श्लोक नंबर 18, उसके नीचे की शंका देखो। काल प्रमाण की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि जीवों का प्रमाण कैसे निकाला जाता है, यानी काल में उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं? अभी अभी हमने क्या पढ़ा? अनंतानंत उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी, यानी अनंतानंत कल्प काल के जितने समय है उन समयों का प्रमाण कितना है, तो ये वो भी अनंतानंत होगा, उससे भी मिथ्या दृष्टि वाला जो अनंत है वो बड़ा है। अब उसको यहाँ समझा रहे, सुनो पहले, देखो काल प्रमाण की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि जीवों का प्रमाण कैसे निकाला जाता है? तो एक ओर अनंतानंत अवसर्पिणियों और उत्सर्पिणियों के समयों को स्थापित करके, अब ये बुद्धि में ही स्थापित करना पड़ेगा। क्यों? वो समय कहाँ से इकट्ठा करें हम? वो तो पर्याय है, वो तो जो बीत जाती है। तो एक बाजू क्या करना, स्थापित करना अनंतानंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणियों के जितने समय है उसको एक बाजू रखो, और दूसरी ओर मिथ्या दृष्टि जीवों की राशि को स्थापित करना। राशि यानी वो संख्या एक बाजू लिखो, दो संख्या की अभी हमने, एक बाजू अनंतानंत अवसर्पिणी उत्सर्पिणियों के समय और दूसरे बाजू मिथ्या दृष्टियों की जो राशि है, मिथ्या दृष्टियों की संख्या, ये दो हमने संख्याएं दो अलग अलग स्थापित की। अब उसमें स्थापित करके काल के समयों में से एक एक समय, उसमें से एक एक समय निकालना, और उसी के साथ मिथ्या दृष्टि जीव राशि के प्रमाण में से एक एक जीव कम करते जाना चाहिए। एक समय निकाला तो एक वहां जीव बाद करो, उसकी संख्या एक एक कम करो, क्या ले? इसी प्रकार उत्तरोत्तर काल के समय और जीव राशि के प्रमाण को कम करते हुए चले जाने पर अनंतानंत अवसर्पिणियों और उत्सर्पिणियों के सब समय समाप्त हो जाते हैं, परंतु मिथ्या दृष्टि जीव राशि का प्रमाण समाप्त नहीं होता है। इसको कहते उसके द्वारा ये अपहृत नहीं होता। हमने अभी पेज नंबर 18 पर पढ़ा था ना कि अनंतानंत उत्सर्पिणी और अवसर्पिणियों के समयों से भी मिथ्या दृष्टि वाला जो अनंत संख्या है वो अपहृत नहीं होती, यानी उसके साथ वो बात नहीं होती, उससे भी बहुत ज्यादा है।
अभी मैं आपको थोड़ा धैर्य इकट्ठा कराना चाहता हूँ। अभी 18 पेज से लेकर 28 पेज तक आपका सिर चकरा जाएगा, लेकिन घबराना मत, 10 ही पेजेस है, जो पेज समझते समझते हमको एक हफ्ता जाएगा। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, कोई भी गैर हाजिर रहेगा तो नुकसान उसका होगा, क्योंकि इसके आगे की जो बात है बहुत गहरी बात है, और अपने को कॉन्सेंट्रेशन एकदम टेरिफिक रखना चाहिए तो ये बात समझ में आने वाली है। मैं आपको घबरा नहीं, मतलब डराया नहीं करा, डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रोत्साहित कर रहा हूँ कि भाई जरा ध्यान दे के समझना, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। और फिर भी मैं कहूँगा कि हर एक व्यक्ति 8:30 बजे बराबर आ जाए, क्या, ताकि वो जो वस्तु चल रही ना, मतलब विषय चल रहे, वो विषय बराबर समझ में आएगा।
हमको भी लोभ होता है ना कि सब लोग समझे बराबर, है ना। हाँ, देखो अभी हमने क्या देखा कि शंकाकार ने पूछा था कि तीन प्रकार के अनंत हैं, कौन से है? परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत। तो सूत्र में तो इतना ही लिखा है कि मिथ्या दृष्टि जीव अनंत है, तो इसमें से कौन सा वाला अनंत पकड़ना, 18 पेज पर हम पढ़ रहे। तो उसके उत्तर में उन्होंने कहा कि जो अनंतानंत अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी बीत जाती है उसमें जितने समय पास हुए उससे भी मिथ्या दृष्टि वाला जो अनंत संख्या है वो बहुत बड़ी है। उसके लिए अभी हमने 28 पेज का रेफरेंस देखा। अभी हम मूल 18 पेज
तो
पर आते हैं।
अपहृत यह शब्द है, वो शब्द समझने के लिए, यानी अपहृत नहीं होता इसका अर्थ क्या है ये समझने के लिए हमने 28 पेज में जो उसका वर्णन किया है। अपहृत नहीं होता यानी वो उसको सरपास नहीं करता।
फिर ये 18 पेज में अंतिम दो लाइन फिर पढ़ती हूँ मैं, देखो समाधान में आगे पूर्वोक्त शंका का परिहार करते हैं, यानी कौन सा वाला अनंत लेना उसकी शंका का परिहार करते हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव काल की अपेक्षा अनंतानंत अवसर्पिणी और उत्सर्पिणियों के द्वारा अपहृत नहीं होते हैं, इस ज्ञापक सूत्र से जाना जाता है। ज्ञापक यानी ज्ञान कराने वाला सूत्र है, जो उससे क्या जाना जाता है कि मिथ्या दृष्टि जीव अनंतानंत होते हैं, यानी वो ना परितानंत होते हैं ना युक्तानंत होते हैं परंतु अनंतानंत होते हैं। ये तो सिद्ध हुआ भी। अथवा व्याख्यान से विशेष की प्रतिपत्ति होती है, ऐसा न्याय है। व्याख्यान से यानी जब वो विषय विस्तृत समझाते हैं तो उसके बाद विशेष की यानी उसमें जो अधिक गहरी बात है या कौन से भेद का यहाँ ग्रहण है उसका हमें ज्ञान हो जाता है। प्रतिपत्ति यानी ज्ञान होता है, प्रतिपत्ति यानी ज्ञान, ऐसा न्याय है। इससे भी जाना जाता है कि मिथ्या दृष्टि जीव अनंतानंत होते हैं। अब ये तो अनंतानंत है, ये सिद्ध हुआ। अब शंकाकार कहता है पहले जो अनंत अनंत कहे आए हैं वह भी तीन प्रकार का है। कौन से तीन प्रकार है उसमें? जघन्य अनंत अनंत, उत्कृष्ट अनंत अनंत और मध्यम अनंत अनंत। कोई भी संख्या के जब हम जघन्य मध्यम उत्कृष्ट लेते हैं तो जघन्य में
यहाँ हमने देखा कि जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट ऐसे अनंत अनंत के तीन भेद है। तो हमने तो देखा अनंत के अनंत भेद होते हैं, है ना? तो जघन्य अनंत अनंत के कितने भेद होंगे बोलो भाई? जघन्य अनंत अनंत के कितने भेद होंगे? अनंत भेद होंगे। आप कितना है कहती बहन?
हाँ, बरोबर है।
क्यों भाई? हमने तो अभी देखा अनंत के अनंत भेद होते हैं। जघन्य हमेशा एक ही रहता है, उत्कृष्ट हमेशा एक ही रहता है, मध्यम में अनेक होते हैं। देखो, ये जीव
ये वही मैं बताने चाहती हूँ। देखो,
तो आप बताने के पहले थोड़ा
पहले
देखे
पूछ लिया। देखो, सौ संख्या है, एक से सौ तक संख्या है, तो उसमें सबसे जघन्य संख्या कौन सी है? एक। और सबसे उत्कृष्ट? सौ। और मध्यम कितने हैं? दो से लेकर 99 तक, यानी कितने हो गए? 98 हो गए। ख्याल है ना? वैसे यहाँ पर जघन्य अनंत अनंत रखो, यहाँ पर उत्कृष्ट अनंत अनंत रखो, बीच वाले जो सभी है वो एक कम करो, ये लास्ट वाला एक कम कर दो, बीच वाले सभी मध्यम अनंत अनंत के भेद हो गए। ख्याल है? तो इतने सारे भेद है। तो शंकाकार क्या कहता है कि ये जो अनंत अनंत मिथ्यादृष्टि जीव अनंत अनंत होते ये तो आपने बताया, परंतु अनंत अनंत के भी इतने अनंत अनंत भेद होते हैं, एक जघन्य, एक उत्कृष्ट, बीच वाले अनंत अनंत स्थान है। तो उसमें से यह अनंत अनंत लिया गया है, जघन्य अनंत अनंत नहीं लिया गया है और उत्कृष्ट अनंत अनंत भी नहीं लिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं जाना जाता है। उसका कहना है जघन्य है कि उत्कृष्ट है कि मध्यम वाला है, यह हम कैसे जाने? उसका समाधान, जहाँ जहाँ अनंत अनंत देखा जाता है वहाँ वहाँ अजघन्य अनुत्कृष्ट। क्या कहते हैं? अजघन्य ने जो जघन्य नहीं और अनुत्कृष्ट ने जो उत्कृष्ट नहीं, तो क्या रह गया अभी? बीच वाले मध्यम। तो जहाँ जहाँ अनंत ऐसा अनंतानंत कहेंगे और वहाँ हम लिखेंगे नहीं जघन्य है उत्कृष्ट है, खाली अकेला अनंतानंत जब संख्या कह देगी तो क्या समझना कि अजघन्य अनुत्कृष्ट अर्थात मध्यम अनंतानंत का ही ग्रहण होता है इस परिक्रम के वचन से। परिक्रम नाम कहीं सुना है आपने? हाँ हाँ हाँ। दृष्टिवाद नाम क्या है? ये दृष्टिवाद क्या है नहीं मालूम, बोलो। बारहवा अंग, दृष्टिवाद बारहवा अंग है। बारह अंग में हमने कितने भेद देखे थे उसके? पांच। एक है सूत्र, परिक्रम तो एक है, प्रथमान योग है, फिर वो 14 पूर्व है और वो चूलिका वाला है, ये पांच भेद उसके होते हैं। तो उसमें से ये जो परिक्रम वाला जो है दृष्टिवाद अंग जो है, बारहवा अंग हम कहते ना बारह अंगों का ज्ञान होता है, ये बारहवा दृष्टिवाद अंगों का, ये परिक्रम नाम का एक उसमें से एक भेद है। उसमें ये वचन आता है, क्या वचन आता है अभी जो हमने पढ़ा कि जहाँ जहाँ अनंत अनंत देखा जाता है वहाँ वहाँ अजघन्य अनुत्कृष्ट अर्थात मध्यम अनंत अनंत का ही ग्रहण होता है। इस परिक्रम के वचन से जाना जाता है कि प्रकृत में अभी वर्तमान में अजघन्य अनुत्कृष्ट अर्थात मध्यम अनंत अनंत का ही ग्रहण है, यानी मिथ्यादृष्टि जीव कितने हैं? तो वहाँ बताया था अनंत है, तो अभी हम इस स्टेज पर आ गए मध्यम अनंत अनंत है, यहाँ तक आ गए ना। शंका, वह मध्यम अनंत अनंत भी अनंतानंत विकल्प रूप है। क्या कहते हैं? मध्यम अनंत विकल्प है ना भेद, मध्यम अनंतानंत के भी अनंतानंत भेद है, खाली एक दो अनंत नहीं, अनंतानंत। इसलिए उनमें से यहाँ कौन सा विकल्प लिया है इस बात का केवल मध्यम अनंतानंत के कथन करने से ज्ञान नहीं होता है। आपने, वो शिष्य कहता है आचार्य को, आपने मध्यम अनंतानंत कह दिया परंतु मध्यम अनंतानंत की रेंज तो अनंतानंत वाली है, उसमें भी अनंतानंत भेद है, तो उसमें से कौन सा भेद लेना? उसका समाधान करते हैं। जघन्य अनंत अनंत से, यानी ये जघन्य अनंत अनंत है, जो जघन्य अनंत अनंत से अनंत वर्गस्थान ऊपर जाकर, ये वर्गस्थान क्या होता है, इसका स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इसी से गुणा करना पड़ेगा, तो जघन्य अनंत अनंत गुणा जघन्य अनंत अनंत, यानी वो ज का वर्ग करना पड़ेगा। उसके अगला वर्गस्थान कितना होगा, ये वर्ग का वर्ग करो, यानी रेस टू फोर हो जाएगा। उसका अगला स्थान 16, यानी उसको उसका वर्ग, ऐसे कितने बार वर्ग क्या वर्ग करो, अनंत बार। जघन्य अनंत अनंत का वर्ग 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 करते जाओ, यानी जो संख्या आती उसका वर्ग, वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग कितने बार करना, अनंत बार करना। देखो जघन्य अनंत अनंत से अनंत वर्ग स्थान ऊपर जाकर, ऊपर जाकर यानी आगे जाकर, और उत्कृष्ट अनंत अनंत से अनंत वर्ग स्थान नीचे आकर। ये जघन्य है और ये उत्कृष्ट है, तो जघन्य से ये बीच में अनंत अनंत वर्ग स्थान है, वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग, ऐसे करते 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 उत्कृष्ट तक हम पहुंच सकते हैं। तो यहाँ से भी अनंत वर्ग स्थान जाओ और यहाँ से नीचे उतर कर अनंत वर्ग स्थान आओ, तो बीच वाला कोई भेद है। तो आकर मध्य में, अभी मध्य में भी कौन सा है, तो जिनेन्द्र देव के द्वारा यथा दृष्ट राशि जैसे हम अंतर्मूर्त में कहते हैं ना, यथा योग्य अंतर्मूर्त, यथा दृष्ट यानी जैसा देखा है वैसा दृष्ट। ये दृष्ट शब्द हमने सुना है क्या, समय सर सुन रही हो ना, दृष्ट श्रुत अनुभूत ऐसी बातें चलती ना वहाँ देखा हुआ सुना हुआ। तो यहाँ क्या बात है, जैसे जिनेन्द्र भगवान ने यथा योग्य वो देखा है मध्यम अनंत अनंत, क्योंकि उनके ज्ञान में ये तो सारे भाग भेद झलक रहे हैं एक साथ, तो उन्होंने जाना है कि मिथ्या दृष्टि वाला अनंत कौन सा है। तो क्या कहते हैं कि जिनेन्द्र देव के द्वारा यथा दृष्ट राशि यहाँ पर अनंतानंत पद से ग्रहण करनी चाहिए, यानी जिनेन्द्र भगवान ने जो यथा योग्य मध्यम अनंत अनंत जाना है, जितने मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या है उसकी यहाँ ग्रहण करना चाहिए, वह मध्यम अनंत अनंत यहाँ जान लेना चाहिए। अथवा दूसरी तरह से बताते हैं, जघन्य अनंत अनंत के तीन बार वर्गित संवर्गित करने पर जो राशि उत्पन्न होती है उससे अनंत गुणी। अब ये वर्गित संवर्गित क्या है वो हम देखेंगे। अब ये जो जघन्य अनंत अनंत है उसको तीन बार वर्गित संवर्गित करने पर विशिष्ट यहाँ राशि आ गई, उस राशि से अनंत गुणी। और छह द्रव्यों के प्रक्षिप्त करने पर जो राशि उत्पन्न होती है उससे अनंत गुणी हीन। ये छह द्रव्यों प्रक्षिप्त करने पर की क्या बात है वो भी हम देखेंगे बाद में, विशिष्ट राशि आती है मध्यम अनंत अनंत की, उससे हीन और इससे अधिक। ऐसी जो मध्यम अनंत अनंत प्रमाण मिथ्या दृष्टि जीवों की राशि है, अभी हमें प्रश्न है, यहाँ दो तीन शब्द आ गए हैं, कैसा है वर्गित संवर्गित और वो भी तीन तीन बार, वो क्या चीज है, वो क्या बला है, ये देखना है। और दूसरे ये छह द्रव्यों को प्रक्षिप्त करना है, यानी क्या ये छह द्रव्य पटक कर कहाँ डाल देने हैं, तो ये डाल बिल कुछ नहीं देना है, हमें यहाँ संख्या का ज्ञान करा रहे, ख्याल है ना। तो हम एक एक बिल्कुल आसान है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। तो उसके लिए दो तीन बातें हमें जाननी है, वो तो जानेंगे, ये हमारे लिए तो शास्त्र लिखा है, क्यों। तो शंकाकार ने पूछ ही लिया है, क्या पूछा, हाँ उस पूछता है तीन बार वर्गित संवर्गित राशि कौन सी है। तो उसके लिए यहाँ पढ़ने के पहले भी हम कुछ विशेष संज्ञाएं देखेंगे, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट विरलन दे या ऐसी वैसी बातें की है, परंतु हमें तो कुछ भी मालूम नहीं है, तो हम पहले मालूम करेंगे शब्दों का अर्थ और फिर आगे बढ़ेंगे। एक द्विरूप वर्गधारा नाम की धारा आती है, जैसे हम 2 1 2 2 2 करते हैं तो हम दो से गुणा करने पर जो आता है उसको हम वो पहाड़े के रूप में कहते हैं। तो एक द्विरूप वर्ग धारा है, दो का वर्ग से वो शुरू हो जाती है। दो का वर्ग कितना है? चार है। चार का वर्ग कितना होगा? सोलह। सोलह का वर्ग या मालूम है? 256 है। 256 का वर्ग 65536, वो इसको पन्नट्टी कहते हैं। पन्नट्टी का वर्ग बादाल है, वो 42 से शुरू होता है और आगे वो 10 अंक प्रमाण है। बादाल का वर्ग इकट्ठी है, वो 18 से शुरू होता है, वो 20 अंक प्रमाण है। अब ऐसे वर्ग का वर्ग करते जाओ, कितना करना? अंतिम स्थान होगा केवल ज्ञान के अभिभाग प्रतिच्छेद देखना, यानी उत्कृष्ट अनंतानंत तक। इसको क्या कहते हैं? द्विरूप वर्ग धारा। वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग करते ही जाओ। अभी इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी हमें सीखना है। तो चार ये कौन से वर्ग स्थान पर है? उसका स्थान पहला है। सोलह का वर्ग स्थान दूसरा है, 256 का वर्ग स्थान तीसरा है, पन्नट्टी का वर्ग स्थान चौथा है, बादाल का पांचवा और इकट्ठी का छठा। ये वर्ग स्थान को वर्ग शलाका कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग शलाका। ये शब्द आने वाले हैं अभी आगे। वहां कहेंगे उसकी वर्ग शलाका से ये इतना जाता है, उतना जाता है। जब जब वर्ग शलाका शब्द आएगा तो द्विरूप वर्ग धारा में वो कौन से स्थान पर है, वर्गों की संख्या हम गिनते हैं ना क्रम से, उसका स्थान कौन से नंबर पर है, उसको क्या कहेंगे अशोक भाई? वर्ग शलाका। खाली शलाका नहीं,
खाली द्वीप में, तीन में, घन में नहीं।
तीन में उसकी वर्ग शलाका अलग होगी, उसकी अपनी वर्ग शलाका अलग होगी। अब यहाँ हम द्विरूप वर्ग धारा की ही बात करेंगे, अन्य धाराओं की यहाँ बात नहीं करेंगे। ऐसी अनेक धारा होती है, घनों दो का घन 8 और उससे वो आगे उसका वर्ग वर्ग करते जाओ, उसकी भी एक अलग धारा होती है। या 8 का भी घन करो 512 आता है, फिर उसका वर्ग 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 करते जाओ, उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे। एकमात्र द्विरूप वर्ग धारा यहाँ ले रहे हैं, है ना? अब उसमें इसको क्या कहेंगे हम? पहला स्थान, दूसरा स्थान, इसको हम कहें वर्ग शलाका कहेंगे, बराबर। ये जो राशि है 4, 16, 256, ये तो जो मूल राशि है, ये मूल राशि है, ये उसकी उस राशि की वर्ग शलाका है। 256 की वर्ग शलाका कितनी है कहेंगे तो 3 है। पन्नट्टी की वर्ग शलाका कितनी है तो हम कहेंगे 4। अब दूसरा एक शब्द आता है अर्धच्छेद। अर्धच्छेद किसको कहना? तो इसका आधा आधा करते जाओ, यानी 2 से डिवाइड करो जो राशि है जिसका अर्धच्छेद निकालना है। अभी 4 को हमको 2 से डिवाइड करना है, तो एक बार डिवाइड किया तो 2 आए और 2 बार डिवाइड किए तो 1 आया, तो 1 आने तक हमको उसको 2 बार उसको 2 से डिवाइड करते जाना है। तो कितनी बार उसको 2 से डिवाइड किया? आधा आधा कितनी बार किया? 2 बार किया। 16 को या उल्टा गिनो, हम 2 संख्या को कितनी बार गुणा करने पर 4 आया? तो 2 बार, 2 बार है ना, तो 2 ये 4 का अर्धच्छेद हुआ। 16 का अर्धच्छेद निकालना है, 4 आ गए, या उसको अर्धच्छेद निकालना है तो कैसे करो? 16 डिवाइडेड बाय 2, ये 8 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 4 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 2 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 1 आया, तो 4 बार हमने डिवाइड किया था। तो इसको कहेंगे 4, ये उसका अर्धच्छेद है 16 का। देखो हमने 4 का अर्धच्छेद, यहाँ हम अर्धच्छेद राशि लिख रहे हैं नीचे, बीच में मूल राशि लिखी है, ऊपर हमने वर्ग शलाका लिखी है और उसके नीचे अभी अर्धच्छेद लिख रहे हैं। तो 4 के अर्धच्छेद कितने हैं? 2। 16 के अभी हमने कितने देखे? 4। 256 के कितने हो गए? 8 हो गए। देखो यहाँ तो वर्ग मूल राशि में तो वर्ग का वर्ग होता है और अर्धच्छेद डबल डबल होता है, एक बार ख्याल में रखा। 4 के जो अर्धच्छेद 2 है, तो 4 का वर्ग 16 है, तो उसके अर्धच्छेद दुगुने हो गए, 4 हो गए। 16 का वर्ग है 256, 16 के अर्धच्छेद 4 थे, तो 256 के अर्धच्छेद कितने हो गए? 8 हो गए। अर्धच्छेद दुगुने दुगुने होते हैं, मूल राशि में वर्ग वर्ग होता है और वर्ग शलाका में एक एक स्थान बढ़ता है। ये तीन बातें ख्याल में, ये नाम हमें ख्याल रखना है। ये मूल राशि वर्गों में बढ़ती है, पहला स्थान है दो का वर्ग, द्विरूप है ना, द्विरूप का वर्ग, द्विरूप वर्ग धारा, दो का वर्ग चार, फिर उसका वर्ग 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 करते जाओ, तो वो वर्ग स्थान हम गिनेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसा, ये वर्ग स्थान है। और अर्धच्छेद में उसको आधा आधा करते जाएंगे या दो से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार हो सकते हैं, या कितनी बार दो संख्या लेकर आपस में गुणा करने पर वो संख्या आती है, कैसा भी आप समझाओ, उस वर्ग स्थान कौन से नंबर पर है वर्ग, उसको वर्ग शलाका कहते हैं। एक तो मूल राशि, कौन सी राशि है, वर्ग का वर्ग वर्ग का वर्ग वर्ग का वर्ग, उसका कौन से स्थान पर है उसका वर्ग का, उसको वर्ग शलाका कहेंगे। और उस राशि के अर्धच्छेद कितने हैं, यानी उसको आधा आधा करेंगे, आधा छेद तो कितने बार वो होगा, तो उसको कहते हैं अर्धच्छेद। तो चार का अर्धच्छेद दो है, और उसके वर्ग करने जाओ राशि, तो उसका अर्धच्छेद होगा दुगुना। सोलह का अर्धच्छेद है चार, तो 256 का अर्धच्छेद कितना होगा, चार का दुगुना आठ। अभी पन्नठी, अभी इतना कहाँ, कितने बार हम दो को आपस में डिवाइड करते जाओ, उसको बहुत बड़ी संख्या है, 65536 है, तो उसके अर्धच्छेद कैसे निकालेंगे, तो हमें 256 के अर्धच्छेद मालूम है आठ, उसको डबल कर दो तो हम बिंदास कह सकते ये उसके अर्धच्छेद 16 है। उसके आगे वाली राशि है बादल, उसके अर्धच्छेद कितने हैं, 32। कभी कभी हमको प्रश्न पूछते हैं, हमने आपको आज 2 रुपए दिए, 2 पैसे से शुरू करो और रोज दुगुना दुगुना करना है, हाँ, 2 के कल 4 पैसे हो गए, फिर 4 के 8 पैसे हो गए, तो कोई कहेगा हमको 1 महीने तक कितना दे, अश्विन भाई हमको पैसे में देना, आप तैयार हैं? हाँ, उसकी बात आएगी भी। तो ये दो दो चार, यानी वो 32 बार भी डबल करेंगे ना, तो बादल की संख्या आती है, 10 डिजिट प्रमाण, पैसे उतने 10 डिजिट के ले लो आप, तो भी कितने हो गए, देखो जरा गिना करते ना, एकम दहम शतम सहस्र दश सहस्र लक्ष दश लक्ष कोटि दश कोटि अब्ज, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, अभी इसमें वो 42 ऐसा कुछ है संख्या, वो तो ये तो 42 के बाद हम इसमें यहाँ पैसे, हाँ बादल आगे फिगर है, हमने 0 रखे बादल वाली, हाँ 42 से, हाँ तो इतने सारे हो गए, अब जब भी नहीं हो गए तो भी करोड़ में तो हो ही जाएंगे, 42 करोड़ के आगे रुपए होगी कुछ, 1 महीने में पैसे से हमने शुरू किया था, 2 2 पैसे से, 2 पैसे के 4 पैसे के 8 पैसे, हाँ तो क्या करें, ये ख्याल में आए, ये मूल राशि द्विरूप वर्ग धारा की हम देख रहे हैं, वर्ग का वर्ग करते जाना है, उसका वर्ग स्थान हमको कहना है तो हम उसको वर्ग शलाका कहेंगे, और उसके अर्धच्छेद, अर्धच्छेद की उसका आधा 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 करते जाओ तो कितने बार आधा कर सकते हैं, तो उसको अर्धच्छेद कहते हैं। उल्टा कहना है तो कितनी बार दो को आपस में गुणा करने पर वो संख्या आएगी, उसके उसी को अर्धच्छेद कहते हैं। तो वो है मूल में 4 के अर्धच्छेद है 2, उसके वर्ग का वर्ग करो तो अर्धच्छेद डबल डबल होते जाते हैं। ये तीन बातें ख्याल में आई तो अब आगे हम पढ़ेंगे इसको। अब इसमें और दो वो भी बता दो, अभी उसको हम कहेंगे विरलन राशि, विरलन वो क्या है वो देखेंगे, और एक है देय राशि, दिखता है आपको, विरलन राशि और देय राशि। हम मान लेते हैं हम 4 संख्या पर घटाते हैं, तो 4 हमने संख्या ली, उसका विरलन करना है, विरलन करना ने बिखेर देना, बिखरो, एक एक में बिखेर दो। तो कितने बार एक एक लिखना पड़ेगा हमें? चार बार। ये विरलन राशि हमने विरलन उसका कर दिया, यानी चार राशि का विरलन करो। अब उसी वही हमारी देय राशि भी है चार, तो हर एक चार के एक एक के ऊपर चार चार लिख दो। ये हमारी देय राशि है, चार का विरलन किया और चार राशि ही देय है, तो हमने चार बार चार लिखा और फिर उसको आपस में गुणा किया। चार गुना चार कितने आए? सोलह। ये सोलह गुना सोलह कितने हुए? 256। तो चार संख्या को विरलन और देय करने पर आपस में गुणा किया, तो चार को चार बार आपस में गुणा करा, उसको कहेंगे उसको वर्गित संवर्गित किया। क्या किया? वर्गित संवर्गित, वर्ग और उसी का वर्ग, यानी चार रेस टू चार, ऐसा कहो फोर रेस टू फोर हम कहते ना उसको, रेस टू कह समझ सकते ना? हाँ, ये ऊपर हम चार के ऊपर यहाँ लिख देते हैं, वो रेस टू कहते हैं इंग्लिश में। मराठी में क्या कहते हैं? हाँ, घातांक, उसका घातांक। हम तो रेस टू ऐसा ही कहेंगे, हाँ, फोर रेस टू फोर। तो उसका अर्थ क्या हुआ? चार को चार बार रखना और आपस में गुणा करना, ये उसका एक बार वर्गित संवर्गित हो गई वो राशि, चार राशि। अभी हम चार नहीं लेंगे, दो ही लेंगे, क्योंकि हमें आगे भी तीन बार वर्गित संवर्गित करना है। दो संख्या कितने बार आपस में गुणा करनी पड़ेगी? दो बार, क्योंकि उसी का विरलन करना है। इसका विरलन किया तो एक एक आया, हर एक के ऊपर दो दो लिखे, आपस में गुणा किया, उसकी राशि आ गई चार। हाँ,
यहाँ देय राशि वही होगी, ऐसा कुछ नहीं है?
नहीं नहीं,
यहाँ तो समझाने के लिए। हाँ,
हाँ, अभी यहाँ तो वही राशि लेनी है।
देय राशि कोई भी हो सकती है?
नहीं, वर्गित संवर्गित उनके प्रश्न।
नहीं नहीं, अभी हाँ,
वर्गित संवर्गित करने में वही राशि, विरलन भी करना वही राशि देय। अब कहेंगे ये जो राशि आई, अभी इसके दो राशि करना, दो राशि नहीं चार करना, चार ही रखना, विरलन भी चार और देय भी चार। एक बार वर्गित संवर्गित किया दो को, चार संख्या आई बराबर। अभी चार को भी विरल, उसको भी विरलन और देय करो, दो राशि स्थापन करो। कैसे? चार दो बार लिखो, यानी एक विरलन कर दो और एक देय करो। ये दूसरी बार वर्गित संवर्गित हुआ, पहले टू रेस टू टू आया, उसका संख्या आई चार, अभी फोर रेस टू फोर करो, तो वो संख्या कितनी आई? 256 आ गई। अभी 256 संख्या ये जो है, अभी 256 एक 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 करके विरलन कर दो और हर एक के माथे पर 256 लिखो, यानी 256 रेस टू 256। 256 को 256 बार लिखकर आपस में गुणा करो, कौन सी संख्या आई? हाँ, पन्नटी नहीं, पन्नटी तो पांच डिजिट वाली है, ये 617 डिजिट वाली संख्या आएगी। डिजिट्स अंक प्रमाण, यानी जो हम कहते ना, देखो अभी हमने देखा था ना, एक करोड़ में कितने जीरो आते हैं? तो ये एक करोड़, ये कितने डिजिट वाली संख्या हुई? आठ डिजिट वाली है। वैसे 617 डिजिट्स वाली संख्या आएगी। कब? हमने दो संख्या को तीन बार वर्गित संवर्गित किया, ख्याल है? देखो देखो, मूल में हमारी संख्या कौन सी ली हमने? दो। दो को एक बार वर्गित संवर्गित किया, चार आया। दूसरी बार उसी जो राशि आई ना, उसको वर्गित संवर्गित किया, 256 आया। उसको वर्गित संवर्गित किया, वो 617 डिजिट प्रमाण संख्या आई, महाराशि कहेंगे। तो ये हुआ तीन बार वर्गित संवर्गित। हाँ, तो अभी हमने जो वाक्य पढ़ा था उसमें दो के बदले मूल संख्या कहाँ से शुरू किया था? हाँ बरोबर है, जघन्य अनंतानंत, जघन्य अनंतानंत अपनी स्टार्टिंग फिगर है, उसको तीन बार वर्गित संवर्गित करो। हाँ इसके जैसा है, पर यार दो गुना दो चार हुआ था, वहां जघन्य अनंतानंत रेस टू जघन्य अनंतानंत करेंगे। हाँ बराबर है, हम तो हमेशा ये कहते हैं ये सुपर कंप्यूटर भी यहाँ फेल हो जाए, महासंगणक जो कुछ होगा।
आपका जो कहना है सुपर कंप्यूटर भी फेल होता है, लेकिन हमारा कंप्यूटर काम कर रहा है, तो जिनेंद्र भगवान का कंप्यूटर कैसा होगा? देखो देखो हाँ,
और उन्होंने ये सारे आपस में रेशियो बताए।
जो सर्वज्ञ भगवान कोई बात बताते हैं, हम उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है, सर्वज्ञ भगवान हो सकता है? मूल तो वहीं से चालू होता है,
ये संख्या भी फिक्स, यानी वो इमेजिन भी करे ना तो सर्वज्ञ की महानता, केवल ज्ञान की महानता भाषित होती है। यानी ऐसा भी कोई, ये श्रुतक ज्ञानी इतना जानते हैं, केवल ज्ञानियों का ज्ञान क्या होगा, ख्याल है ना? तो पहले में पहले जघन्य अनंतानंत, जघन्य अनंतानंत रेस टू जघन्य अनंतानंत, ये हो गया एक बार संवर्गित संवर्गित। अब उसको फिर और ये ऊपर चढ़ा दो, इसके दो बार वर्गित संवर्गित, और फिर ये ऐसा है उसके ऊपर और एक ऐसा चढ़ा दो, हाँ जो कुछ होगा वो, ये तीन बार वर्गित संवर्गित। मूल राशि तो जघन्य अनंत अनंत है, ये दो राशि हमने ली तो भी यानी हमारी पैक पैक हो गई, हम उसको इमेजिन नहीं कर सक रहे हैं। हाँ तो ये तीन बार वर्गित संवर्गित हुआ, तो इतना तीन बार वर्गित संवर्गित होने पर जो राशि आई उसको भी मध्यम अनंत अनंत कहेंगे, उससे भी मिथ्या दृष्टियों की संख्या ज्यादा है। हाँ देखो यहाँ फिर पढ़ते, ये 19 पेज पर देखो, अभी हमने जो पढ़ा है उसको दोबारा पढ़ते हैं समाधान में, ये सारा पढ़ा था हमने। जघन्य अनंत अनंत से अनंत वर्ग स्थान ऊपर जाकर और उत्कृष्ट अनंतानंत से अनंत वर्ग स्थान नीचे आकर मध्य में जिनेन्द्र देव द्वारा यथादृष्ट राशि यहाँ पर अनंतानंत पद से ग्रहण करनी चाहिए, यहाँ पर यानी मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या लेने में, अथवा जघन्य अनंतानंत के तीन बार वर्गित संवर्गित करने पर, ये वर्गित संवर्गित का अर्थ अभी ख्याल में आया, पहले तो पढ़ डाला था हमने क्यों, तो तीन बार वर्गित संवर्गित करने पर जो राशि उत्पन्न होती है उससे अनंत गुणी, हाँ उससे अनंत गुणी, और हाँ ये जो वर्गित संवर्गित करने पर जो राशि आएगी उससे अनंत गुणी, और अन्य किसी राशि से कम है तो अन्य कौन सी राशि बता रहे हैं कि छह द्रव्यों के प्रक्षिप्त करने पर जो राशि उत्पन्न होती है उससे अनंत गुणी हीन, वो प्रक्षिप्त करना है ना, क्या वो बात आगे आएगी, थोड़ा धीरे से धीरज रखेंगे ना तो सब बात ख्याल में आ जाएगी। अभी वर्गित संवर्गित तो ख्याल में आया, अभी क्या है आसान है ना, इसमें क्या है, तो जो राशि उत्पन्न होती है उससे अनंत गुणी हीन मध्यम अनंतानंत प्रमाण मिथ्या दृष्टि जीवों की राशि है। ये फायदा समझ में आया ना, उस संबंधी हमारा ज्ञान नहीं था, उसका ज्ञान हो रहा है, ये सर्वोत्कृष्ट फायदा है, किसी चीज का ज्ञान होना यही फायदा है।
ये ज्ञान में निर्मलता आती है, ज्ञान में वृद्धि भी होती
है, सही ज्ञान हो रहा है। ये तो खोटा ज्ञान होता है तो भी हम आनंद मानते, खोटा ज्ञान कैसा, अरे कोई सीरियल चल रही है, अरे अभी आगे क्या होगा उसका, अरे वो जानने से क्या अपना जाने वाला है, फिर भी उसमें किसी नहीं मैं सबकी बात, किसी के पर्सनली किसकी बात नहीं, हम हरेक की वो अनुभव की बात है, हम तो उसमें जानना चाहते, अरे कल या ऐसा ऐसा हुआ उसमें क्या हुआ, वो वहाँ क्यों गया था, उसको क्यों शूट किया, अरे जानने की उत्सुकता है ना। तो इसमें तो सत्य चीज का ज्ञान होता है, तो ज्ञान की निर्मलता हो जाती है बिल्कुल। तो ये गणित का तो ऐसा है कि हमारा उपयोग इधर उधर जाता ही नहीं कहीं बिल्कुल, और आनंद आता है जब कोई चीज समझ में आती है, पहले हम नहीं समझते थे, अब तीन बार वर्गित संवर्गित एकदम अपने आइडिया आती है, अरे क्या है वर्गित संवर्गित करना है नहीं क्या करना, ये तो ख्याल में आ गया ना अभी। तो शंका, तीन बार वर्गित संवर्गित राशि कौन सी है, ये शंकाकार को आचार्यों को मालूम है हमें कौन सी शंका उत्पन्न होने वाली है, तो वो स्वयं ही शंकाकार के मुंह में वो शंका डाल के अपना समाधान करते हैं। देखो समाधान, जघन्य अनंतानंद का विरलन करके, ये विरलन ख्याल आया, हमने चार का विरलन किया तो एक 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 एक, एक, एक चार बार लिखा, तो जघन्य अनंत का अनंतानंद का विरलन करना है ने एक 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 लिखना कितने बार, जघन्य अनंतानंत बार, और विरलित राशि के प्रत्येक एक के ऊपर, प्रत्येक एक के ऊपर का अर्थ है जैसे चार को विरलन किया तो चार बार हमने एक 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 लिखा और प्रत्येक एक के ऊपर चार चार लिखा, वैसे जघन्य अनंतानंत को विरलन कर दिया तो उसके प्रत्येक एक के ऊपर क्या लिखेंगे हम, जघन्य अनंतानंद, जघन्य अनंतानंद, जघन्य अनंतानंद, जघन्य अनंतानंद, ख्याल है, तो प्रत्येक एक के ऊपर जघन्य अनंतानंत को देय रूप से देकर, इसको कहते हैं देय राशि। पहली है विरलन राशि जिसको हम एक 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 में लिख देते हैं, हर एक के एक के माथे पर हम वो देय राशि लिखेंगे, तो यहाँ देय राशि भी वही है जो विरलन राशि है, बराबर। तो हर एक के ऊपर हमने जघन्य अनंतानंद, जघन्य अनंतानंद, जघन्य अनंतानंद लिख दिया। फिर उनके परस्पर वर्गित संवर्गित करने पर, यानी वो सभी राशियां परस में आपस में गुणा करना, एक बार गुणा करेंगे तो वर्ग होता है, फिर वो वर्ग उसके आगे वाले उसे गुणा ही करता करते रहना, इसलिए उसको कहते हैं वर्गित संवर्गित। तो उसके परस्पर वर्गित संवर्गित करने पर जो महाराशि उत्पन्न हो, जैसे हमने दो से शुरू किया था, दो का विरलन किया, दो बार एक एक लिखा, हर एक के माथे पर देय राशि भी दो लिखी, तो दो गुना दो किया तो हमारी महाराशि चार उत्पन्न हुई। हाँ, तो ये जो महाराशि उत्पन्न हो उसकी दो पंक्ति करनी चाहिए, दो पंक्ति ने विरलन राशि भी चार और देय राशि भी चार, इसको कहेंगे दो पंक्ति करने। दो पंक्ति ने, एक पंक्ति में हमने विरलन किया और एक पंक्ति में हमने देय लिखा, ये दो पंक्ति, ख्याल आया, उसी राशि की, यानी उसमें से दो डिवाइड नहीं किए करना है, चार में आधा आधा नहीं करना, चार राशि को एक विरलन रूप में लिखना और एक देय रूप में लिखना, इसको कहते हैं दो पंक्ति करने। ये तो समझाने के लिए, समझाने के लिए देखो, कभी कभी क्या कहते हैं, अभी हमने विरलन राशि चार लिखी और हमको देय राशि, हो सकती है हमने देय राशि दो ही लिखी, देय राशि कोई हमारी अपनी मर्जी के अनुसार होगी, ऐसे कोई अन्य भी गणित है उसमें देय राशि और विरलन राशि अलग अलग होती है, तो उसमें तो ये अलग फिगर आएगी ना उसकी, अपनी अभी सेम है, देय राशि भी और विरलन राशि भी सेम है,
लेकिन अपने को कितने विभाजन होने वाले है, अभी तो आनंद है, समझ लीजिए 20 होगी तो 20 बार करेंगे तो 20 बार समझने के लिए एक एक को 20 बार लिखना पड़ेगा ना,
ये ऐसा लिखने से समझ में आने आसानी आ जाती है। देखो यहाँ तो डायरेक्ट विरलन और देय लिखा है, तो पहली बार हम डायरेक्ट पढ़ेंगे तो ये विरलन क्या होता है, देय क्या होता है, महाराशि क्या होता है, कुछ नहीं समझ में आया। सम्यक ज्ञान चंद्रिका में भी ऐसी बातें आई थी, मगर हम आगे आगे पढ़ते गए और फिर पीछे पीछे का अर्थ लगता गया, तो माथा फोड़ फोड़ के ये सब बातें अभी ख्याल में आ रही है, इसलिए पहले इन शब्दों का अर्थ हम देखते हैं, विरलन क्या है, देय क्या है, है?
इसको आपको घर में जाकर एक बार दोबारा पढ़ना चाहिए ताकि आपको आज जो फ्रेश आपके दिमाग में बैठी हुई बात को आप अच्छी तरह से ग्रास्प कर सकेंगे। सच कहते हैं ये कोई सामने तो शास्त्र है, लेकिन जब हमने पहली दूसरी बार पढ़ा था तब तो कुछ दिमाग में नहीं चढ़ता था, हमको सिखाने वाला तो कोई था ही नहीं, लकीली कि मुझे तो सिखाने वाला कोई था, लेकिन फिर भी आगे पीछे जाते जाते हमने वो बात देख ली और इसको पूरा करने के लिए तो हमारे एक में अरविंद भाई है जो छोटे बच्चे जैसा हट करते करते ये आप सिखाओ सिखाओ करके ये बात अभी
सिखाते समय वो ज्यादा क्लियर हो, मुझे
क्लैरिटी आती है,
ये आपके फायदे के लिए नहीं मैं सिखाती हूँ, ये सिखाते समय तो और ज्यादा उसमें अपने को ही उसके उत्तर सूझ जाते हैं सहज रूप से।
चलो
क्या कहे, इसको हम फिर पढ़े, पहले से पढ़ेंगे समाधान। जघन्य अनंत अनंत का विरलन करके, अभी वो विरलन करके कहते तो हम इमेजिन करते हैं विरलन करना है ना, एक 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 करके लिख देना। और विरलित राशि के प्रत्येक एक के ऊपर जघन्य अनंत अनंत को देय रूप से देकर, देय रूप देना है हर एक एक के ऊपर, जघन्य अनंत अनंत, जघन्य अनंत अनंत लिख लो। उनके परस्पर वर्गित संवर्गित करने पर, परस्पर उसमें बीच में वो मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख दो, गुणा कर दो आपस में, जो महाराशि उत्पन्न हो। हमारे एग्जाम्पल में दो को दो बार हमने गुणा किया, दो टू इंटू टू चार आया। ये जो महाराशि उत्पन्न हुई उसकी दो पंक्ति करनी चाहिए, अर्थात तत्प्रमाण राशि को, यानी वो चार प्रमाण राशि को दो स्थानों पर स्थापित करना चाहिए। दो स्थानों पर यानी उसका भी विरलन और उसका भी देय। उनमें से एक राशि का विरलन करके, यानी जो भी चार संख्या आई थी उसका विरलन करके, और उस विरलित राशि के प्रत्येक एक के ऊपर दूसरी पंक्ति में स्थापित महाराशि को देय रूप से देकर, यानी जो चार संख्या है पहले तो हमने उसको विरलित करके और उसी राशि को देय रूप से स्थापित करके, ख्याल है, यानी हर एक एक के ऊपर हमने चार 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 लिख दिया, देय रूप से स्थापित करके या देय रूप से देकर। और उनके परस्पर वर्गित संवर्गित करने पर जो महाराशि उत्पन्न हो, अपने उदाहरण में 256 आ गए, जो महाराशि उत्पन्न हो उसकी फिर से दो पंक्ति करनी चाहिए, एक विरलन करनी है और एक देय करनी है। उनमें से एक राशि का विरलन करके, यानी 256 बार एक 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 लिखो, और हर एक एक के माथे पर 256 लिखो। और विरलित राशि के प्रत्येक एक के ऊपर दूसरी पंक्ति में स्थापित महाराशि को देय रूप से देकर, उनके परस्पर गुणा करने पर जो महाराशि उत्पन्न होती है उसे तीन बार वर्गित संवर्गित राशि कहते हैं। अब ये ख्याल में है ना, जैसे 256 को आपस में हमने गुणा किया 256 बार, तो जो कोई महाराशि होगी उसको हम कहेंगे ये दो संख्या की तीन बार वर्गित संवर्गित राशि है। दो संख्या की, हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट दो संख्या थी, वैसे अभी हम जो मिथ्या दृष्टियों का प्रमाण देख रहे हैं वहां स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, जघन्य अनंतानंत। तो जघन्य अनंतानंत को विरलित करो, उसके हरेक के ऊपर जघन्य अनंतानंत लिखो, एक बार वर्गित संवर्गित होगा, यानी जघन्य अनंतानंत रेस टू जघन्य अनंतानंत। वो एक बार हुआ, ये एक बार वर्गित संवर्गित हुआ, जो संख्या आई उसको विरलन करो, उतना ही देय दे दो। हाँ, तो जघन्य अनंतानंत रेस टू, यानी ज रेस टू जग कहते हम, अभी बड़ा ही संख्या मत लेना। ख्याल है ना, आपकी ऐसा प्रश्न है आपका, मिथ्या दृष्टि को जो हम संख्या देख रहे हैं वो क्या तीनों काल में ऐसी संख्या है, तो ऐसी ही रहती अनंत, यानी उसमें से कितने ही जीव, 608 जीव 6 महीने में और 8 समय में मोक्ष जाते रहेंगे, फिर भी मिथ्या दृष्टियों का प्रमाण उतना ही अनंत रहेगा। वो मध्यम अनंत अनंत वाला भेद, उसके आगे पीछे करो तो उसका वर्ग का स्थान हो जाएगा, इतने उसमें कभी फर्क पड़ेगा ही नहीं। कभी भी देखो तभी
तीनों काल में जब भी आपको देखना हो तब ये संख्या तो उतनी ही रहेगी,
इतनी संख्या है।
क्योंकि क्या है, हमें आनंद का हमें पता ही नहीं है,
एनी गिवन
आनंद का हमें पता ही नहीं कि आनंद क्या होता है। जिसका अंत नहीं है ऐसा अनंत है, वो भी मध्यम अनंत अनंत की बात चल रही, तो उसमें 10-15-25 निकल जावे तो कोई
चिंता होती है ना, इतने सारे मोक्ष चले जाएंगे तो यहाँ कौन रहेगा, ये अभी ये पढ़ेंगे तो वो भी चिंता मिट जाएगी। क्योंकि हम एक निगोल शरीर में कितने अनंत जीव है देखते, तो ये पूरा लोकालोक, ये लोक जो है पूरा लोकाकाश, लोकालोक नहीं लोकाकाश, अकेले निगोद से नहीं, अन्य भी सभी सूक्ष्म एकेंद्रियों से ठसो ठस भरे है। तो एक निगोद शरीर में कितने जीव है? अनंत है, है ना? वो अभव्यों से अनंत गुण है, उसकी बात आएगी आएगी। हाँ, तो जो सिद्ध जीव है, सिद्धों की संख्या भी अनंत होगी, वो सब आने वाली है बातें। अभी तो हमें सभी गुणस्थानों की, सिद्धों की, मिथ्या दृष्टियों की, सबकी गणना करनी है। वही तो ये पूरा पुस्तक का है ना, आपके सभी प्रश्न इसमें सॉल्व होने वाले। धीरज रखना, अरविंद कहते धीरज रखना जरा,
आपकी दूरदृष्टि है ना। हाँ, तो आप आगे की सोचते हैं। हाँ, पहले तो दूरदर्शन दृष्टि थी, वो हटकर अभी दूर दर्शन निकल गया, दूर दृष्टि रह गई। अभी दूर दृष्टि है वो तो सम्यक दृष्टि हो जाएगी, चिंता मत करो।
अच्छा, अभी तो ज्यादा समझ में आई है। जब पहली बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो इतना नहीं ख्याल रहते, बार बार आता है तो ये तो वी आर यूज्ड टू इट। अभी विरलन क्या, देय क्या, ये तो आसान हो गए ना। वर्गित संवर्गित क्या, वो तो एक टेक्निक समझ में आया। तो ये शब्द बार बार आएंगे आगे, तो हमें घबराहट नहीं होगी, ये क्या चल रहा है, ये अपने को समझ में नहीं आता, चलो अभी बंद कर दो, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल समझ में आने वाली, सभी जो कुछ मिथ्या दृष्टि है। अभी हमने देखी थी ना, मिथ्या दृष्टियों में हमने कितने प्ररूपणा लगाई, कितने जीव समास होते हैं उसमें, 14 की 14। अभी सभी आ गए उसमें। अभी उदाहरण उन्होंने बीज गणित से समझाया है, जघन्य अनंत अनंत के क लिखा, उसके लिए हमने ज लिखा था या ज अ लिखा था, उसके बदले यहाँ क लिखा। तो एक बार वर्गित संवर्गित राशि ने क को क बार आपस में गुणा किया तो क रेस टू क आया, बराबर। दो बार वर्गित संवर्गित किया तो पहला जो उन्होंने ब्रैकेट में लिखा क रेस टू क, और उसको भी उसी से क रेस टू क से उसको रेज करना, फिर तो ऐसा आया ना। ये देखो, पहला ब्रैकेट जो डाला है मूल संख्या क, क को आपस में क बार गुणा करेंगे तो क, क रेस टू क आया, एक बार हुआ। अभी दो बार करना है तो क रेस टू क्यों को भी क रेस टू क से उसके ऊपर चढ़ा दो घातांक उसका, ये दो बार वर्गित संवर्गित हो गया। अभी उसी को उन्होंने सॉल्व किया है बीज गणित के फॉर्मूला के अनुसार, सिंप्लीफाई करने के लिए। वो क्या लिखा है, ये जो ऐसे ऊपर घातांक है उसके बदले उन्होंने क रेस टू क मल्टीप्लाइड बाय क रेस टू क आया। ये नहीं समझे तो कोई बात नहीं, अपना मूल समझ में आया ना वर्गित संवर्गित। ये बीज गणित के फॉर्मूले नहीं भी ख्याल में है तो कोई चिंता नहीं है, हम वो अंक गणित के द्वारा ही उसकी संदृष्टि देखने वाले। ये कोई अपना विषय नहीं, नहीं भी, ये तो मॉडर्न जो जानते हैं बीजगणित उनके लिए ये अलग से उन्होंने लिखा। या एक के ऊपर एक चढ़ाते जाओ ऐसा भी लिखो तो भी चलेगा, उसको उन्होंने सिंप्लीफाई करने के लिए। उसी की वैल्यू कितनी आती है तो उन्होंने बीच में सॉल्व किया और अंतिम क्या रिजल्ट आया, क रेस टू क रेस टू क प्लस वन। ये उसके बीजगणित के फॉर्मूले के अनुसार आता है। अब तीन बार वर्गित संवर्गित किए तो ये जो दो बार में अंतिम रिजल्ट आया था वो ब्रैकेट में लाया और उसको रेस टू उसी फिगर से किया, और उसका फॉर्मूला फाइनल जो कुछ आया है तो वो उन्होंने नीचे लिखा है, तीन बार के नीचे वो लिखा है। ये बीजगणित की बात है, आप इसको भूल जाओ तो भी कोई बात नहीं, हमने दो फिगर पर जो अंक गणित से घटाया था वो याद रखना है हमें, ख्याल है। अब हम नीचे पढ़ेंगे अंक गणित। हाँ, इस फॉर्मूला वो कहते हैं, इस फॉर्मूला में दो संख्या लिखे और बराबर आता है कि नहीं, बराबर देखो। चलो अभी उतना तो करेंगे, ये तीन बार वर्गित संवर्गित है ना, तो उसमें लिखा है दो रेस टू दो रेस टू टू प्लस वन प्लस दो रेस टू दो प्लस वन, बराबर। ये ऐसा है ना, क प्लस वन है ना, क के बदले वहाँ दो लिखा, ये 2+1 यहाँ 3 आए, टू रेस टू 3 8 हो गए, 8 × 9 = 11, 2 raised to 11 हो गए, 2 raised to 2 and 2 raised to 11, 4 11 times, या 2 raised to ये जो कुछ होगा 2 raised to 11 वाला, 22 नहीं होता, 4 raised to 11 हो सकेगा, हाँ 4 × 11 ऐसा लिखो, हाँ उन्होंने लिखा ना वो तो हाँ नहीं, मगर ये जो हमने 256 का लगाया निकाला है ना वो तो आ सकता है, हाँ ये नीचे अंक गणित लिखा है ना उसको ही हम देखेंगे, नीचे का अंक गणित देखेंगे, देखो अंक गणित से जघन्य अनंत अनंत इज इक्वल टू 2, ये समझ में आया जो हमने अभी देखा था, एक बार 2 raised to 2 इज इक्वल टू 4 बराबर, 2 × 2 = 4 आता है, दो बार यानी 4 raised to 4 किया यानी 4 × 4 × 4 × 4 256 आ गए, अभी हमने सुलझाया था, अब तीन बार करना है वर्गित समवर्गित यानी 256 raised to 256, तो उसका उत्तर की देखो आगे लिखा है, यदि हम 256 को 256 से इतने ही बार गुणा करें तो जो संख्या उत्पन्न होगी वह 617 अंक वाली होगी, डिजिट्स 617 डिजिट्स वाली होगी, इस प्रकार इकाई रूप छोटी सी दो संख्या को, इकाई ने हमारा मिनिमम कितना 2 था, 2 का यूनिट हमने लिया था, तो उस दो संख्या को 3 बार वर्गित संवर्गित करने पर 617 अंक वाली महासंख्या उत्पन्न होती है, इस पर से किसी भी मूल राशि से उत्पन्न हुई त्रिवार यानी 3 बार वर्गित संवर्गित राशि के विस्तार का अनुमान लगाया जा सकता है, यानी दो संख्या इतने विस्तार को होती है तो वो जघन्य अनंत अनंत का विस्तार कितना होगा, ख्याल है, शंका, 3 बार वर्गित संवर्गित करने से उत्पन्न हुई यह महाराशि संपूर्ण जीव राशि से और संपूर्ण जीव राशि से कुछ कम ऐसे जो मिथ्या दृष्टि जीव राशि है, ब्रैकेट बाद में पढ़ेंगे, क्या कहना चाहते हैं, ये जो 3 बार वर्गित संवर्गित किया किसको, जघन्य अनंत अनंत को, उसमें जो राशि उत्पन्न हुई वह जो महाराशि है वो संपूर्ण जीव राशि से और मिथ्या दृष्टि राशि से अनंत गुणी हीन है, यह कैसे जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले क्या कहा था, जघन्य अनंत अनंत को 3 बार वर्गित संवर्गित करने पर जो महाराशि आएगी उससे अनंत गुणा मिथ्या दृष्टियों की राशि है, अभी उल्टा प्रश्न पूछ रहे कि ये जो महाराशि है वो संपूर्ण जीव राशि से कहो या मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या से अनंत गुणाहीन, अनंत गुणाहीन का अर्थ होता है अनंतवा भाग, तो ये जो महाराशि आई 3 बार वर्गित संवर्गित उससे भी अनंत गुणा वो मिथ्या दृष्टियों की राशि है, ये आपने कैसे जाना, ऐसा प्रश्न है, प्रश्न फिर पढ़ती हूँ मैं, 3 बार वर्गित संवर्गित करने से उत्पन्न हुई यह महाराशि संपूर्ण जीव राशि से और संपूर्ण जीव राशि से कुछ कम मिथ्या दृष्टि जीव राशि से अनंत गुणी हीन है, यह कैसे जाना जाता है, अब उन्होंने मिथ्या दृष्टि राशि के उसके लिए क्या कहा, संपूर्ण जीव राशि से कुछ कम, संपूर्ण जीव राशि हमने ऐसे जीव लिखा यहां, उसमें से कुछ कम कर दो तो मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या आएगी, तो ये कुछ कम में किस किस को कम करना जरा सोचो, पिनंग आप कह सकते, संपूर्ण जीव राशि में से किसको किसको कम करना पड़ेगा तो मिथ्या दृष्टि की राशि आएगी, बोलो, देखो दूसरे से चौदहवें गुण स्थान तक और सिद्ध राशि, ये उसमें से बात करना पड़ेगा। यहाँ लिखा है देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, द्वितीय आदि यानी दूसरे से लेकर शेष 13 गुण स्थान यानी कितने 14 तक, क्योंकि दो से हम गुना करेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, तो ये 13 गुण स्थान आ गए। तो द्वितीय आदि शेष 13 गुण स्थान संबंधी राशि प्लस क्या और सिद्ध राशि प्रमाण कम, संपूर्ण जीवों में से, संपूर्ण जीवों की संख्या में से दूसरे गुणस्थान से चौदहवें गुणस्थान तक की संख्या प्लस सिद्धों की संख्या बात करेंगे तो मिथ्या दृष्टियों का प्रमाण आएगा। तो ये जो तीन बार वर्गित संवर्गित राशि है वो मिथ्या दृष्टि राशि से अनंत गुणी हीन है, ये आपने कैसे जाना, ऐसा प्रश्न है। प्रश्न ख्याल आएगा तो आगे हम उत्तर पढ़ेंगे उसका समाधान। अभी ये वो अर्धच्छेद वर्गशाला का की यहाँ बात आने वाली, ये हमने इसको विस्तार से देखा था। देखो जघन्य परितानंत के अर्धच्छेदों में उसी की अर्थात जघन्य परितानंत की एक अधिक वर्गशलाकाएं मिला देने पर जघन्य अनंतानंत की वर्गशलाकाएं उत्पन्न होती है। ये थोड़ा आपस में हम इसका संबंध देखेंगे। पहला शब्द क्या लिखा है, जघन्य परितानंत, ये सबसे छोटे में छोटा अनंत है। तो हमने तीन प्रकार के अनंत देखे थे, जघन्य परितानंत, जघन्य युक्तानंत और जघन्य अनंतानंत, तीन राशि देखे ना। तो इसका आपस में कैसा संबंध है, तो कहते हैं जघन्य परितानंत रेज टू जघन्य परितानंत, यानी जघन्य परितानंत को विरलन कर दो, उसी को देय करो, आपस में गुणा करो, यानी एक बार वर्गित संवर्गित करो। क्या अपने अभी ये नई भाषा यूज करेंगे ना, तो जघन्य परितानंत का एक बार वर्गित संवर्गित करने पर जघन्य युक्तानंत आता है, यानी जघन्य परितानंत रेज टू जघन्य परितानंत, हाँ नहीं ये तो जघन्य युक्तानंत आता है बराबर। अब जघन्य युक्तानंत और जघन्य अनंतानंत का आपस में क्या फायदा, क्या उसका रिलेशन है, तो जघन्य युक्तानंत को खाली वर्ग कर दो गुणा, जघन्य युक्तानंत गुणा जघन्य युक्तानंत एक ही बार उसका स्क्वायर कर दो तो जघन्य अनंतानंत आता है। ये ख्याल है, यानी जघन्य परितानंत को वर्गित संवर्गित करो तो क्या आता है, जघन्य युक्तानंत आता है, और जघन्य युक्तानंत को एक बार ही जघन्य युक्तानंत से गुणा करो यानी उसका वर्ग करो तो जघन्य अनंतानंत आता है। नहीं जघन्य युक्तानंत को रेस टू जघन्य युक्तानंत रेस टू टू करो, रेस टू टू यानी उसका स्क्वायर करो, उसका वर्ग करो, जघन्य युक्तानंत गुणा जघन्य युक्तानंत, वहां रेस टू टू ही करना है, एक बार जघन्य युक्तानंत को ये जघन्य युक्तानंत से गुणा करना। यहाँ हमने रेस टू किया था, जघन्य परितानंत को जघन्य परितानंत रेस टू किया था, उसका घातांक वही था। अब यहाँ के क्या है, जघन्य युक्तानंत को जघन्य युक्तानंत से एक बार ही गुणा करना यानी उसका वर्ग करना, स्क्वायर करना, तो जघन्य अनंतानंत आता है। इतना तो समझ में आया ना। तो अभी यहाँ क्या कहते हैं कि जघन्य परितानंत के अर्धच्छेदों में उसी की अर्थात जघन्य परितानंत की एक अधिक वर्गशलाकाएं मिलान देने पर जघन्य अनंतानंत की वर्गशलाकाएं उत्पन्न होती है। अब ये हम अनंतानंत की बात छोड़ देंगे, अपनी सादी भाषा में देखेंगे। हमने जघन्य परितानंत के बदले में हम चार संख्या लेते हैं बराबर, ये मेरी संदृष्टि, इसमें नहीं लिखी। जघन्य परितानंत के लिए हम अगर चार लिखेंगे तो जघन्य युक्तानंत की संख्या कितनी आएगी, 4:4 कितनी आएगी 256, और जघन्य अनंतानंत की कितनी आएगी 65। बराबर, एक वर्ग आगे। अब यहाँ जो जो वो आपको सिद्धांत ये हमने ये पढ़ेंगे हम, तो हम वही फिगर हम अपने फिगर में उसको संदृष्टि में हम देखेंगे। 65,536 जघन्य अनंतानंद। यदि हम चार को जघन्य परितानंद मानते हैं तो 4:4 256 आएंगे, वो जघन्य युक्तानंद हो जाएंगे। बराबर, जघन्य युक्तानंद का एक बार वर्ग करो, 256 का वर्ग 65 आएगी, यानी ये हमारा जघन्य अनंतानंद हो जाएगा। अभी यहाँ जो बताना चाहते हैं वो हम इस पर देखेंगे। ये अपनी इसको कहते हैं संदृष्टि, यानी उदाहरण के तौर पर हमें जो मालूम है फिगर्स उसमें हम उसको पुटअप करेंगे। अभी एक एक वाक्य पढ़ेंगे ना, उसका अर्थ हम यहाँ लगाएंगे। एक एक वाक्य पढ़ूंगी मैं और इसमें लगाएंगे हम। देखो, जघन्य परितानंत के अर्धच्छेदों में, जघन्य परितानंत के बदले चार करो आप, चार के अर्धच्छेद कितने हैं? दो। तो इस दो में उसी की, यानी जघन्य परितानंत की, यानी चार की एक अधिक वर्गशाला का मिला देना। चार की वर्गशाला का कितनी है? और उसके अर्धच्छेद हम नीचे लिख रहे हैं। चार की वर्गशाला का कितनी? एक। अब देखो, फिर इसको इस वाक्यों को मैं फिर पढ़ रही हूँ। जघन्य के परितानंद के अर्धच्छेदों में, अर्धच्छेद कितने? दो। उसमें जघन्य परितानंद के यानी चार की एक अधिक वर्गशाला का मिला देने पर, ऐड करना एक अधिक वर्गशाला का, इसकी वर्गशाला का एक है, एक अधिक हो गए तो दो हो गए, तो वो दो ऐड करना। किसमें? अर्धच्छेद दो है, दो में दो मिलाना, कितने आए? चार आए। मिला देने पर जघन्य अनंतानंत की वर्गशलाकाएं उत्पन्न होती है। ये चार आया वो जघन्य अनंतानंत की वर्गशलाका हुई, यानी हमारी पनट्टी की वर्गशलाका आती है कि नहीं, उत्तर आता है कि नहीं। देखो यहाँ जो है चार के अर्धच्छेद में चार की ही वर्गशलाका प्लस वन मिला देना, तो दो प्लस एक प्लस एक चार हुए। ये चार क्या है? जघन्य अनंतानंद जो पन्नठी यहाँ आती है उसकी वर्गशाला का आती है डायरेक्ट। बराबर, क्योंकि ये बड़ी बड़ी फिगर्स है उसमें तो यही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ तो क्रम से है और ये संख्या हमारे इमेजिन के अंदर है, ये अनंत को हम कैसे इमेजिन करेंगे? तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, वहां भी यही लगेगा। यहाँ दो की बात नहीं है, अभी हमने दो, अभी वो दो को भूल जाओ आप। यहाँ ये नई संदृष्टि में आपको समझाने के लिए ले रही हूँ कि हमने जघन्य परितानंत को चार माना, जप इज इक्वल टू फोर, तो हमारे जघन्य युक्तानंत कितने हो गए? 4:4 तो जघन्य युक्तानंत हमारे कितने हो गए? 256 हो जाएंगे। और जघन्य अनंतानंत कितने हो गए? 256 का स्क्वायर, यानी नहीं रेस टू नहीं 256 का स्क्वायर करना, जघन्य युक्तानंत का वर्ग ही करना खाली, यानी 256 × 256 वो कितने आए? 65 आए। बराबर, अभी हम ये फॉर्मूला पढ़ेंगे क्या, जघन्य परितानंत के अर्धच्छेदों में जघन्य परितानंत की वर्गशाला का प्लस एक मिला देंगे तो जघन्य अनंतानंत का वर्गशाला का आएगी। बराबर, फिट होता है? अभी अगला वाक्य पढ़ेंगे। तीसरी लाइन, तथा जघन्य परितानंत के द्विगुणित अर्धच्छेदों से, अभी जघन्य परितानंत के द्विगुणित अर्धच्छेद, अर्धच्छेद है दो, द्विगुणित करने पर चार हो गए, द्विगुणित अर्धच्छेदों से जघन्य परितानंत के गुणित करने पर इसके अर्धच्छेद को दो गुणा करो और उससे जघन्य परितानंत को गुणा करो, मल्टीप्लाई करो, देखो जघन्य परिता अनंत के अर्ध छेद है दो, उसको दो गुणा करना और मूल चार को गुणा करो उसके, 4 × 4 16 आ जाएंगे। तो ये क्या आते हैं गुणित करने पर, जघन्य अनंत अनंत की अर्धच्छेद छलाका आती है। मैजिक है, एकदम मैजिक है। और ये संदृष्टि लेते तो ये खाली ऐसे पढ़ेंगे ना तो इमेजिन नहीं कर सकते, इस संदृष्टि में बिल्कुल ख्याल आता है कि ऐसा ही है, नहीं तो पढ़ लेते बस ऐसा है ऐसा है, बार हो गया होगा, होता होगा गाइस वो अर्धच्छेद क्या वर्गशाला का, पर एक्चुअली हम उसकी संदृष्टि लेते तो ख्याल में आता है कि ये फिगर्स बराबर फिट होती है उसमें। और ये संदृष्टि कहीं नहीं इसमें। अब ये देखो आगे पढ़ेंगे, ये जघन्य अनंत अनंत की अर्धच्छेद शलाकाएं, ये जो 16 है जघन्य अनंत अनंत की अर्धच्छेद शलाकाएं जघन्य परितानंत से असंख्यात गुणी है, इससे जघन्य परितानंत से, अब ये तो हमने चार गुणा हमको मालूम है परंतु ओरिजिनल जघन्य परितानंत से जघन्य अनंतानंत की अर्धच्छेद शलाका जो है उसकी जो संख्या है वो असंख्यात गुणी है। असंख्यात गुणी हुए नहीं, वो अनंत में होगा ना, जघन्य परितानंत का असंख्यात गुणा करेंगे तो ये अनंत का ही कोई भेद होगा, है ना। तो क्या कहते देखो, ये जघन्य अनंतानंत की अर्धच्छेद शलाका है जघन्य परितानंत से असंख्यात गुणी है और उसी के अर्थात जघन्य परितानंत के उपरिम वर्ग से असंख्यात गुणी हीन है। उसकी संख्या अर्धच्छेद की संख्या क्या कहते हैं, फिर पढ़ो, जघन्य अनंतानंत की अर्धच्छेद शलाका यानी अर्धच्छेद की वैल्यू कितनी है, जघन्य परितानंत से यानी जघन्य परितानंत की वैल्यू से असंख्यात गुणी है, इसका अर्धच्छेद भी इसके असंख्यात गुणा है। नहीं समझे, ये मूल संख्या तो इससे जो कुछ गुणा है वो होगी ही, उसके अर्धच्छेद भी इसके असंख्यात गुणा है, यानी वो संख्या कितनी बड़ी होगी कि उसके अर्धच्छेद जघन्य अनंतानंत जघन्य परितानंत से असंख्यात गुणा ऐसा बड़ी है वो। क्या कहने चाहते तीसरी लाइन से देखो, तथा जघन्य परितानंत के द्विगुणित अर्धच्छेदों से, अपने फिगर में उसको डालना, अभी जघन्य परितानंत ने दो चार, जघन्य परितानंत के अर्धच्छेद कितने हैं दो, उसको दो गुणा करो चार, उस चार से जघन्य परितानंत के गुणित करने पर, चार से जघन्य परितानंत जो चार है उसको गुणा करो, जघन्य अनंतानंत की अर्धच्छेद छलाकाय होती है, जघन्य अनंतानंत के अर्धच्छेद की वैल्यू आती है तो 16 आ गई। नहीं, उसका अर्धच्छेद हुआ, अर्धच्छेद का अर्थ क्या होता है, दो से कितनी बार उसको भाग दे सकते हैं। देखो शब्द का अर्थ ख्याल में लेना, वर्गशाला कहने कित कौन से स्थान का वर्ग है उसको वर्गशाला का कहें, अर्धच्छेद ने आधा आधा छेद करते जाओ तो कितने बार कर सकते हैं, तो दो से कितने बार डिवाइड कर सकते हैं, आधा करना है ने क्या, अर्धच्छेद का अर्थ क्या होता है दो से कितने बार उसको छेदा जा सकता है, ख्याल है ना, शलाका यानी उसकी वैल्यू कहो उसकी संख्या कहो, अर्धच्छेद डायरेक्ट कहो या अर्धच्छेद शलाका कहो एक ही बात है। हाँ, अभी चौथी लाइन, ये जघन्य अनंतानंत की अर्धच्छेद शलाकाएं जघन्य परितानंत से असंख्यात गुणी है, जघन्य परितानंत ये जो चार है उससे इसके अर्धच्छेद असंख्यात गुणे हैं। अब यहाँ छोटी छोटी वैल्यू है ना तो उसमें उसके साथ उसका वर्ग का हमें पता चले, परंतु जितने स्थान आगे बढ़ेंगे उसका उसमें डिफरेंस भी अलग वेरिएशन में होगा, इसलिए मूल जो संख्या है उसमें कितना वैल्यू में डिफरेंस पड़ता है। तो यहाँ पर जो जघन्य परितानंत है उससे जघन्य अनंतानंत के जो अर्धच्छेद है वो भी असंख्यात गुणा हो जाएंगे। उस संख्या से वो संख्या असंख्यात गुणा है। यहाँ वाला जो अनंत है उस अनंत को असंख्यात गुणा कर दो, अनंत मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात, वो इसके अर्धच्छेदों की वैल्यू आ जाएगी। अब आगे पढ़ेंगे असंख्यात गुणी, और उसी के अर्थात जघन्य परितानंत के उपरिम वर्ग से असंख्यात गुणी हीन है। अब इसका उपरिम वर्ग 16 है, इस 16 से ये असंख्यात गुणी हीन है। अब हमें दिखने के लिए 16 और 16 ही है क्योंकि हमें इमीडिएट फिगर्स लिए है इसलिए, परंतु जो अनंतों में जो चलेगा तो उसमें वो डिफरेंस आएगा। ये वाला इसका वर्ग जो है जघन्य परितानंत का वर्ग जो होगा उससे ये संख्या हीन है, ये वाली हीन है। जघन्य अनंतानंत नहीं, उसके अर्धच्छेद, उसके अर्धच्छेद असंख्यात गुणी हीन है। नीचे से चौथी लाइन, इन जघन्य अनंतानंत की अर्धच्छेद शलाकाओं में, ये वाली 16, जघन्य अनंतानंत के अर्धच्छेद शलाकाओं में जो जघन्य परितानंत की अर्धच्छेद शलाकाओं से अधिक है, ऐसी जघन्य अनंतानंत की वर्ग शलाकाएं मिला देने पर प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि की वर्ग शलाकाएं होती है। क्या कहना चाहते हैं? ये जो जघन्य अनंतानंत की अर्धच्छेद शलाका है उसमें क्या मिलाना है? जो जघन्य परितानंत की अर्धच्छेद शलाकाओं से अधिक है ऐसी जघन्य अनंतानंत की वर्ग शलाकाएं मिला देने पर, जघन्य परितानंत की अर्धच्छेदों से अधिक है ऐसी जघन्य अनंतानंत की वर्ग शलाकाएं मिलाने पर, जघन्य अनंतानंत के अर्धच्छेद में जघन्य अनंतानंत की वर्ग शलाकाएं मिला देने पर। फिर से ये वाक्य पढ़ते हैं, देखो, जघन्य अनंतानंत की अर्धच्छेद शलाकाओं में, यानी ये 16 में जो जघन्य परितानंत की अर्धच्छेद शलाकाओं से अधिक है ऐसी जघन्य अनंतानंत की वर्ग शलाकाएं मिला देने पर, जो जघन्य परितानंत के अर्धच्छेदों से अधिक है ऐसी जघन्य अनंतानंत की वर्ग शलाकाएं मिला देने पर, यानी जघन्य अनंतानंत के अर्धच्छेदों में जघन्य अनंतानंत की वर्ग शलाका मिला देने पर प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि की वर्ग शलाकाएं होती है। पहली बार वर्गित संवर्गित राशि की वर्ग शलाका कितनी, वर्ग शलाका ने उसका ये स्थान यहाँ जैसे 4 है तो इसमें ये तो 20 हो गए, 20 हो गए ना, तो ऐसा चौथा स्थान, पांचवा स्थान, छठा स्थान, ऐसा आगे करते जाओ तो 20वां स्थान होगा उसका, उसकी वर्ग शलाकाएं आएंगी। एक बार वर्गित संवर्गित करने पर कौन सी राशि आएगी, तो इसके आगे वर्ग करते जाओ तो 20वें स्थान पर जो हाँ वो एक बार वर्गित संवर्गित राशि आएगी। आगे भी पढ़ लेंगे, फिर इसको दोबारा कल पढ़ेंगे, बिल्कुल, फिर कोई अपने जल्दी नहीं है, हमें कोई उतावल नहीं है, बिल्कुल समझ गए। और आपको समझना है तो मेरे लिए अच्छा है, मुझे आनंद आता है, और समझ समझ कर आगे बढ़ेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं आगे बढ़ने। एक वाक्य पढ़ते हैं हम इसमें, हाँ, जघन्य ये पहले होगी ना, अब जघन्य अनंतानंत के अर्धच्छेदों को, जघन्य अनंतानंत के अर्धच्छेदों को जघन्य अनंतानंत से गुणित करने पर इस अर्धच्छेदों को पनट्टी से गुणित करने पर, जघन्य अनंतानंत से गुणित करने पर प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि की अर्धच्छेद शलाकाएं होती हैं। क्या कहा हमने? देखा था जघन्य अनंतानंत के अर्धच्छेद 16, उसमें उसकी अर्ध उसकी जो वर्गशाला का चार मिला दी तो हमारे प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि की वर्गशाला का ही यानी 20वें स्थान पर होगा। हमने जगन्य अनंतानंत पन्नट्टी को मान लिया है हा? तो ऐसा वो 20वां स्थान आएगा। अब दूसरी बार क्या लिखे हमने यहाँ कि जगन्य अनंतानंत के अर्धच्छेदों को 16 को पन्नट्टी से गुणा करने पर वो क्या आएगी प्रथम वर्ग वर्गित संवर्गित राशि के अर्धच्छेद शलाक आएगी जो महाराशि है उसके अर्धच्छेद आएंगे। इसको दोबारा कर ले लेंगे फिर शुरू से ले लेंगे जावाणी के ज्ञान तेस